बहुत साल पहले लैंड सीलिंग का, भूमि का सीमा नियंत्रण, इतनी भूमि मनुष्य रख सकता है, इसका कानून बनने वाला था। तो हमारे एक परिचित सज्जन बंगाली कलकत्ते में हैं, वो सुना रहे थे। उनके पास काफी जमीन थी, चिंता होनी सहज है कि भाई हमारी जमीन कैसे बचावें। अकस्मात उनको ख्याल आया कि मेरे मकान के ठीक सामने बिड़ला जी का जनरल मैनेजर रहता है, इसको जरूर पता होगा, ये लोग मारवाड़ी लोग बड़े कुशल होते हैं। अब आमने सामने मकान जान पहचान होती है, उनसे मिलने गया और पूछा, भाई ये आ रहा है कानून, तो आप लोगों ने तो, आपकी तो बहुत जमीनें हैं, हमारी क्या है इसके सामने, तो बचाने का सोचा ही होगा, हमको भी बता देवे तो हम भी अपनी जमीन बचा लेवे। उन्होंने कहा, भाई अभी तो नहीं, कानून बन जाने दो, फिर इसको बचाने की बात हम तुमको बता देंगे। उसने सोचा ये टाल रहे होंगे, उसने कहा अरे बता दो, जब कानून बन जाएगा फिर क्या हो सकता है, फिर तो बन ही गया। तो वो जो उनका प्रधान मुनीम था, जनरल मैनेजर, वो समझ गया, हंस के कहा, आप घबराइए नहीं, हम आपको बतला देंगे, परंतु कानून बनने के पहले नहीं बतला सकते, कानून बनने के बाद ही बताएंगे। उन्होंने कहा ऐसी बात क्यों, बोले पार्लियामेंट के अंदर हमारे आदमी होते हैं, अफसरों में भी हमारे आदमी होते हैं, तो जब कानून बनता है तो उसमें 5-6 ऐसे रास्ते छोड़ दिए जाते हैं जिनसे उस कानून के खिलाफ काम किया जा सके। अब जब पार्लियामेंट के अंदर वो जाता है तो कोई एक दो कमजोरी लूपहोल ऐसी होती है जो किसी को पता चल जाती है, तो कोई सांसद कह देता है, एमपी कह देता है, इस कानून में ये चीज ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो बंद हो जाता है। परंतु 5-6 में 3-4, 2-3 बची जाते हैं। तो कानून पास होने के बाद ही पता चलेगा ना कौन कौन से लूपहोल बचेंगे, फिर वो उसके अनुसार हम अपना बचाव कर लेते हैं, आपको भी बता देंगे। तो जैसे वहां कानून बनाते समय ही बचाव का रास्ता भी रहता है, इसी प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि की, अब इस सृष्टि से बचने के लूप होल भगवान ने छोड़ दिए। जो जानकार होगा, समझदार होगा, वो उस रास्ते से बच जाएगा। अधिकतर लोगों को तो पता नहीं है कि उस कानून में बचने वाली बात कौन सी है, इसलिए वो तो कानून की पकड़ में आ जाते हैं। इसी प्रकार यदि परमेश्वर ने केवल एक जागृत अवस्था बनाई होती तो आगे कुछ सोचने का मौका ही नहीं था, मन में प्रश्न ही नहीं आता, संदेह ही नहीं आता, लोग चलते रहते। अब परमेश्वर ने ये सृष्टि लोगों को बंधन में रखने के उद्देश्य से नहीं बनाई हो। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्म धारितम्। परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई कि इसमें आकर के जीव जीवन मुक्ति के सुख को लेवे, इसलिए बनाई। अगर केवल जागृत अवस्था बनाते तो ये काम होता नहीं। अतः उन्होंने दूसरी अवस्था बनाई, स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में भी संसार वैसा ही दिखता है जैसा यहां दिखता है, ऐसे ही लोग बैठे हुए दिखते हैं, ऐसे ही लोग सवाल पूछते हैं, ऐसे ही जवाब होते हैं, ऐसा का ऐसा दिखता है वो। परंतु वहां जो दिखता है वो है नहीं, वहां जो दिखता है वो केवल तुम्हारे मन की वासनाओं से दिख रहा है, वहां कोई चीज ऐसी नहीं है। जागृत में दिखता है तो चीज है और तुम्हारी वासनाएं भी है। स्वप्न के अंदर तुम्हारी वासनाएं तो हैं, चीज कुछ नहीं है और दिखता ऐसा ही है। तब अब आगे विचार जागृत होता है कि स्वप्न के पदार्थ दिखते हैं और नहीं हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जागृत के पदार्थ भी दिखते हैं और नहीं हैं। ये संदेह आता है ना। जब ये संदेह आता है तो विचार करने में प्रवृत्ति होती है कि सच्चाई क्या है। क्या सचमुच संसार है जैसा दिखता है, अथवा यहां पर भी संसार सच्चा नहीं है, है कुछ और चीज और दिखता कुछ और चीज। अब विचार करो, कोई कह सकता है जागृत में जो दिखता है वो पदार्थ के होने पर दिखता है, स्वप्न में जो दिखता है वो पदार्थ के बिना हुए दिखता है, दोनों चीजों को अलग मान लो। तो अलग नहीं मान सकते, भगवान ने पहले ही सोच लिया कि ये शंका कोई करेगा। जैसे उत्तर गोल के अंदर इस समय सर्दी पड़ रही है तो दक्षिण गोल में गर्मी पड़ रही है, वहां गर्मी है यहां सर्दी है, वैसे ही जागृत एक गोल हो गया, स्वप्न दूसरा गोल हो गया। तो भगवान ने जागृत के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी रख दी जो है नहीं और दिखती है। शाम का समय है, 6 बज गए हैं, अंधेरा हो पड़ा है, तुमको सांप दिख गया, तुम्हारे हाथ में अलाती थी, टॉर्च थी, तुमने झट से जला के उसके ऊपर डाला तो वो रस्सी निकली। इसलिए जागृत में भी बिना हुए चीज दिख सकती है। ऐसे अनेक अनुभव होते हैं। अब इन दोनों के पादों को देखने से जैसे घोड़े के द्वारा पहले गए जहां वो मरा था, फिर वहां से शेर के पैरों के द्वारा गुफा में गए, ऐसे ही जागृत का विचार करते हुए आदमी जब स्वप्न के साथ मिला के विचार करता है और जागृत में होने वाले भी रज्जु सर्पादि स्थल को देखता है तो पता लगता है कि यहां के पदार्थ भी वास्तविक नहीं हैं। फर्क स्पष्ट याद रखना। ये नहीं कह रहे हैं कि जागृत के पदार्थ स्वप्न की तरह मिथ्या है, ये नहीं कह रहे हैं। फर्क है, परंतु केवल इतना कह रहे हैं कि जैसे वहां के पदार्थ हमेशा के लिए नहीं है, वैसे ही यहां के भी पदार्थ हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा के लिए स्वप्न के पदार्थ नहीं है, क्योंकि जगने पर नहीं है। हमेशा के लिए जगने के पदार्थ भी नहीं है। शाम को किसी ने भोजन का निमंत्रण दिया, बढ़िया खीर मालपुआ बना था, पेट भरने के बाद कोई एक आके कहता है मेरे हाथ से तो एक और ले ही लीजिए। अरे भाई अब तो पेट भर गया, पहले आते नहीं जी, एक तो ले ही लीजिए। अब फिर घरवाली आ जाती है, मेरे हाथ से तो लेना ही पड़ेगा, ये साल औरतों की आजादी का साल है और मेरे हाथ से नहीं लेंगे, आपने पति के हाथ से ले लिया, ये कैसे हो सकता, बराबरी का अधिकार है। अब गले तक आ गया, अब घर आके काम क्या कर सकते हैं, सो गए, नींद आई, पेट कैसा है, ठस भरा हुआ है, भूख का नाम निशान नहीं। स्वप्न आया, मद्रास जा रहे हैं रेल में बैठ करके, घर से भोजन लेकर के बैठना था, जल्दबाजी में भोजन घर पर ही छूट गया। स्टेशन पर जहां देखें वहां कहीं पूड़ी आलू के साग का नाम ही नहीं। जो वहां चीजें बनती हैं उसके अंदर इतना प्याज लहसुन पड़ा हुआ है, अपने तो कभी खाया हुआ नहीं। पूड़ी साग मिलता नहीं, वहां का सांभर खा सकते नहीं, यात्रा भी पूरी 3 दिन की, भूख लगी है बड़ी तेज, भूख के मारे जी घबरा रहा है, कुछ खाने को नहीं है। अब विचार करो, जागृत के खीर मालपुए पेट में पड़े हुए स्वप्न की भूख को मिटा रहे हैं क्या? तो जागृत के पदार्थ स्वप्न में काम नहीं आते, स्वप्न के पदार्थ जागृत में काम नहीं आते, ये तो आप लोग सब जानते ही है। इसलिए जागृत के पदार्थ भी सब समय काम आते हों ऐसा नहीं, स्वप्न के पदार्थ भी स्वप्न काल में तो काम दे ही देते हैं। अतः जागृत और स्वप्न दोनों पदार्थों के अंदर हमेशा रहनापना नहीं है। स्वप्न के पदार्थ जागृत के काम के नहीं, जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न के काम के नहीं। अतः दोनों एक जैसे वास्तविक नहीं है। परंतु स्वप्न में भी, अब ये विचित्र चीज समझना, विचार की बात है, स्वप्न में जो सारा संसार तुमको दिख रहा है, वहां सड़क दिख रही है, मोटर दिख रही है, बस दिख रही है, वो जो कुछ दिख रहा है वो सब तुम ही बनाने वाले हो ना, और अपने संस्कारों से ही बना रहे हो। कहीं दूसरी जगह से तो वहां मकान बनाने के लिए ईंट नहीं लाते, किसी सीमेंट फैक्ट्री से तो वहां पर सीमेंट को लेके नहीं जाना पड़ता, टाटा टोर को लेकर के तो वहां पर तुमको छत नहीं डालनी पड़ती। जो कुछ वहां है वो सब तुम और तुम्हारे संस्कार है। जो 50 आदमी वहां बैठे दिख रहे हैं वो सब भी तुम्हारे सिवाय तो वहां कोई नहीं है ना, ठीक समझ गए भाई। फिर भी तुमको प्रतीति क्या होती है, वहां पर भी तुम्हारे जैसा एक शरीर बना हुआ, वहां भी तुमको लगता है ये शरीर मैं हूं और ये कोई दूसरे हैं। विचार की बात है, ठीक से समझना। स्वप्न में भी अपना एक शरीर दिखता है ना, वो तो दिखता है ये मैं हूं, और दूसरे सब दिखते हैं ये दूसरे हैं। जगने पर पता चल जाता है ना कि वहां पर मेरे सिवाय तो कोई नहीं था, परंतु वहां तो पता नहीं चल रहा था, एक शरीर अपना दिख रहा था, दूसरे सब दूसरे दिख रहे थे। अतः वहां पर भी ये पता नहीं चलता कि इन सब में व्यापक सर्वरूप मैं हूं। सर्वरूपता वहां है ये जगने पर पता लगती है, लेकिन वहां पर भी अपनी सर्वरूपता का पता नहीं है। पता तो यही है कि मैं वहां के 3.5 हाथ के खाक के पुतले में बैठा हुआ देख रहा हूं, इसलिए व्यापकता का पता वहां भी नहीं है। मैं व्यापक नहीं हूं, यही वहां भी भान है। तो जागृत में मैं व्यापक नहीं हूं, संसार के कुछ पदार्थ हैं और कुछ मैं देखता हूं, तीन चीजें। स्वप्न के अंदर बाहर के पदार्थ नहीं है, अपनी वासना से देखता हूं फिर भी अपनी व्यापकता का ज्ञान नहीं है। अब जब गहरी नींद में जाते हैं, गुफा के अंदर जाना है, जैसे वहां काला ही काला था, तो जो उनके साथ गए थे उनको बाहर छोड़ दिया। इसी बात को यहां मंत्र कह रहा है, समस्तान विपादान जयति इति स्वयं प्रकाश स्वयं ब्रह्म भवति इति एष सिद्धिकर एतस्माद् ध्यानादौ प्रयुज्यते सर्वकरणोपसंहरत्वात्। सारे करण, सारी इंद्रियां, ज्ञान के सारे साधन, अंतकरण मन भी, उन सबको बाहर छोड़ दिया। गहरी नींद में जाते हैं तो ये सब उपाधियां पीछे छोड़ के जाते हैं, तब उस अंदर में घुसते हैं। जैसे वहां अंधेरा ही अंधेरा, वैसे ही गहरी नींद अपने को कैसी लगती है? अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ पता नहीं लगता। अब यदि इस सुषुप्ति का विचार करें, गुफा के अंदर घुसें, तब वहां जाकर के दिखती है वो आत्ममणि। सुषुप्ति में भी ये पता लगता है कि मैं कुछ नहीं जान रहा, मैं कुछ नहीं जान रहा, अर्थात मैं कुछ नहीं को जान रहा हूं। ये है आत्ममणि। जैसे वहां पर उस मणि के साथ वो लड़की खेल रही थी, वैसे ही ये जो अज्ञान वहां पर है, उस अज्ञान के अंदर परमात्मा जो है वो किस रूप से है? तो आनंद रूप से है। दो बातें इकट्ठी ही कहता है, मैं कुछ नहीं जान रहा था, बड़े आनंद में था। दोनों बातें कहता है ना, कुछ नहीं जान रहा था, फिर आनंद को जान रहा था कि नहीं जान रहा था? ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग? तो हम लोगों को आदत ये पड़ी हुई है कि सुख किसी चीज का होता है, इसलिए बिना चीज का सुख होवे तो हम जल्दी समझ नहीं पाते। जब सुषुप्ति के अंदर जाते हैं तो वहां न बाह्य जगत है, न वहां हमारे संस्कारों का जगत है, क्योंकि इंद्रियां सब, मन बुद्धि सब छोड़ दी थी गुफा के बाहर। वहां पर जो ज्ञान है वो आत्मा ही, वहां अज्ञान और आनंद दोनों को प्रकाशित करता है। स्वयं प्रकाश स्वयं ब्रह्म भवती, वहां पर इस स्वयं प्रकाशता का बिल्कुल स्पष्ट पता लग जाता है। एष सिद्धिकरः, इसलिए उपनिषद कहती है कि इस सुषुप्ति के अंदर जब इस प्रकार जाते हैं तब सिद्धि की प्राप्ति। एष सिद्धिकरः धार्य धारणात् ब्रह्मतुरीयम्, इस प्रकार से जागृत स्वप्न के अंदर जो बाह्य प्रतीति और आभ्यंतर प्रतीति, इन सबका अपन्नव करने से सिद्ध जो धार्यम, जो अपने स्वरूप को धारण किया जाता है, स्वमात्रम, वही आत्मस्वरूप है, धारण होता है, निश्चय होता है, तब ब्रह्म तुरीयम, तब जो ये तुरीय ब्रह्म है ये स्थित होता है। अब जब वो मणि मिल गई तो अब भगवान वापस ले आए मणि को, सब लोगों को दिखा दी, तो ढूंढना तो पड़ा पैर के चिन्हों से। जैसे वहां पर घोड़े के, शेर के, भालू के पदचिन्हों से ढूंढा, अंततो गत्वा गुफा में गए और वहां मणि मिली। इसी प्रकार यहां जागृत के अंदर विचार, स्वप्न के ये सब पदचिन्ह हैं, सुषुप्ति और सुषुप्ति के अंदर जो गाढ़ अंधकार रूपी अज्ञान और अंत तो गत्वा वहां पर खेलती हुई लड़की जो आनंद स्वरूप, उसकी जब प्राप्ति हो जाती है तो अब जब लेकर के आए तो कृष्ण का कलंक धुल गया कि ये चोर है, तुम सभी कृष्ण हो, सबके कलंक लगा हुआ है। क्या कलंक लगा हुआ है? सब बंधन में पड़े हुए हैं, इतना बड़ा कलंक है। तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, जो तुमको दूर से भी देख लेवे वो भी बंधन से छूट जाता है, और उस तुम्हारे ऊपर कलंक लगा दिया गया है, तुम बद्ध हो, तुम पापी हो, तुम मूर्ख हो, जिसके ज्ञान से ब्रह्मा विष्णु भी ज्ञान वाले, जिसके आनंद से ब्रह्मा विष्णु भी आनंद वाले, जिसकी सत्ता से ब्रह्मा विष्णु भी सत्ता वाले, जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष, ऐसे तुम्हारे ऊपर कलंक लगा हुआ है कि तुम बद्ध हो, तुम अज्ञानी हो, तुम मूर्ख हो। जब इस प्रकार से जागृत स्वप्न सुषुप्ति के द्वारा जाकर के उस मणि को प्राप्त करते हो, मणि देख तो पहले ही ली गई थी, वो ध्यानावस्था में देखी गई थी, वो निर्विकल्प समाधि में देखी गई थी, परंतु वो मणि स्थिर नहीं रही। अब जब ले आए तो अब वो वहां पर स्थिर रूप से अंदर बंद हो गई तिजोरी में, क्योंकि उसने दे दी। तो इस प्रकार से जब धार्य धारणात, जैसे वहां मणि धार्य कही जाती है, पहनी जाती है, धार्य धारणा, जहां पर धारण होनी थी वहां धारण हो गई, तो फिर ब्रह्म तुरीयम, तब वो तुरीय ब्रह्म की स्थिति है। अब इसकी प्राप्ति का तरीका और क्या है वो आगे बताते हैं।
Shut up.